बुधवार 16 नवंबर 2011 लेक्चर नंबर 1 5 समवाय ओम नमः सिद्धेश्वर ओम नमः सिद्धेश्वर ओम नमः सिद्धेश्वर ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वैच्छायाणं नमो लोए सवसाहूणं जम्जस्य जम्यदेशे जेन विहाणेन जम्य कालं मे नादं जिनेन नियदम् जम्मं वा अहवमरणं वा संतः सतम् निदेशे तेन विहाणेन तं मि कालं मे कोटकलिवारेदुम् इन्दो वातः जिनेन्दो वा एवं जो निश्चयदो जानदि दौवाणि सौपज्जाये सो सद्दिट्ठि शुद्धो जो संकदि सोह पुदिट्ठि। प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय अपने स्व समय में अपने द्रव्य में से ही होती है, उसको टालने में कोई इंद्र या जिनेन्द्र समर्थ नहीं है। इस तरह के हमने जो अभी गाथाएं पढ़ी है उसका जो कारण है, उसकी जो रीजनिंग है, वो हमारे समझने आ गई। इसलिए अभी अपना ये 5 समवाय का विषय चल रहा है। जब जब कार्य होता है तो कार्य कब होता है?
ये 5 समवाय होते तब षट कारक से
हर समय होता है।
हर समय होता है
कार्य कब होता है तो हर समय, तो कारण आएंगे तो ही कार्य होगा ऐसा मानेंगे तो कभी कभी होने का प्रसंग आएगा। तो कार्य ने पर्याय हर द्रव्य में हर समय होती ही है, और उसका अर्थ है वहाँ 5 कारण भी विद्यमान होते ही होते हैं। ये 5 कारण कौन से हमने देखे थे? तो स्वभाव है, पुरुषार्थ है, काल लब्धि है, भवितव्य है और निमित्त है। यहाँ अलग ऑर्डरली है, सभी एक साथ विद्यमान होते ही है। तो स्वभाव की बात देखने के पश्चात अभी निमित्त की बात अपने चल रही है। तो पहले तो हमने निमित्तों की चर्चा हम कर चुके हैं, जरा पहले फिर रिवाइज कर लेते हैं। पेज नंबर 59 है, 6 नंबर का पत्र जहाँ शुरू होता है। गुजराती में नंबर कितना है? पेज नंबर
60
है। एक आध दो पेज का फर्क है। निमित्त जहाँ निमित्त लिखा है,
साइट।
देखो यहाँ तीसरी लाइन से पढ़ेंगे, कार्य अर्थात पर्याय मिला बापूजी।
कार्य मतलब पर्याय।
हाँ, गुणों के विशेष कार्य को अर्थात परिणमन को पर्याय कहते हैं। यह बात हम पहले पढ़ चुके हैं, तो सिद्धांत प्रवेशिका में हमने पढ़ा था। जीवादि 6 द्रव्यों में से प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है, और उनमें प्रत्येक में प्रति समय स्वयं का कार्य यानी स्वयं की पर्याय, स्वयं में स्वयं की शक्ति से स्वयं की उस समय की योग्यता से होता है। यानी कितनी स्वतंत्र रहता है, अनंतानंत द्रव्य है, उसके अनंतानंत गुण है, और प्रत्येक गुण में अपना अपना कार्य अपने समय पर स्व शक्ति से होता है। हमने वस्तुत्व गुण का स्वरूप पढ़ते समय देखा था, अपना अपना कार्य करने की शक्ति प्रत्येक द्रव्य में विद्यमान है। और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि द्रव्यत्व गुण के कारण यह परिणमन हर समय हो गया, ऐसी भी शक्ति द्रव्य में ही विद्यमान है। ये तो हमने पहले बहुत विस्तार से देख लिया। अब इसमें ये जो कार्य होता है तो 2 प्रकार के कारण बताए, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। उन दोनों की परिभाषा देख लेते हैं। द्रव्य स्वयं कार्य रूप परिणमता है, यह उसकी निजी शक्ति है, यानी उसकी अपनी शक्ति है। यह कारण द्रव्य में ही विद्यमान है, इसे उपादान कारण कहते हैं। ये तो बाहर से दिखाई नहीं देता, वो उसके अंदर विद्यमान है वो कारण। और दूसरा निमित्त कारण किसे कहना, परंतु जो स्वयं कार्य रूप तो न परिणमे। हम जिस कार्य की बात कर रहे हैं, अभी घड़ा बना तो उस रूप कौन परिणमित हुआ, तो मिट्टी। मिट्टी स्वयं अपनी निज उपादान शक्ति के कारण घड़े रूप परिणमित हुई। तो कहते हैं ये कार्य रूप स्वयं तो जो न परिणमे, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके। हमें कौन वो घड़ा बनाते हुए दिखाई दे रहा है या लगता है, भाषित होता है? हाँ, कुम्हार। कुम्हार पर आरोप आता है कि कुम्हार ने घड़ा बनाया। स्कूल में भी ऐसा सिखाया ना हमको। तो उस कारण को क्या कहेंगे, निमित्त कारण। जो बाह्य किसी की उपस्थिति है वो अपना अपने में परिणमित हो रहा है, परंतु किसी द्रव्य के कार्य का आरोप उस द्रव्य पर आता है, उसको हम निमित्त कहते हैं। यानी तो परद्रव्य है, निमित्त यहाँ तो परद्रव्य है। अभी तो इतनी बात लेके चलेंगे। तो जो स्वयं परिणमित होगा वही उस कार्य का कर्ता है, और जो जिस पर आरोप आता है वो तो उसका निमित्त है। अब आगे हम देखेंगे आगे के पृष्ठ पर, क्योंकि अपना विषय हुआ था इसलिए मैं इसको विस्तार से नहीं ले रही हूँ। देखो पेज नंबर 61, यहाँ घड़ा ही उपादेय है लिखा है, वहाँ से पढ़ेंगे।
घड़ा स्वयं कौन परिणमित हुई?
नहीं नहीं, वो तो उसके आगे के पेज पर।
हाँ, 62 से।
हाँ, घड़ा उपादेय है, मिला ना? घड़ा ही उपादेय है और घड़ा ही निमित्तिक। अभी क्या कहते हैं, कार्य कितना हुआ, एक हुआ, कारण कितने बताए, दो। अभी मिट्टी के घड़े पर घटित करेंगे। उपादान कारण है मिट्टी और निमित्त कारण है कुम्हार। अब ये जो एक कार्य हुआ उसको हमें नाम देना है, तो उपादान कारण की तरफ से इस कार्य को हम बताएंगे तो उपादान उपादेय ऐसा कहेंगे। यानी घड़ा बना, उसका कारण क्या है, उपादान तो मिट्टी, और मिट्टी का ये घड़ा क्या है, हम कार्य कहते हैं ना, तो उपादान की अपेक्षा इस मिट्टी को क्या है, घड़े को क्या कहेंगे, उपादेय, उपादान उपादेय। भाई ख्याल में आती बात? एक कार्य बना उसको हम दो नाम देंगे। क्यों दो नाम देंगे, कि जिस कारण के तरफ से उसका वर्णन करेंगे उसका नाम उसको दे देंगे। तो हमने उपादान की तरफ से कार्य को क्या कहा, तो उपादेय,
मिट्टी का उपादान है,
तो मिट्टी उपादान है और घड़ा उसका कार्य उपादेय है। उपादान उपादेय एक ही द्रव्य में होता है अपने पर्याय के साथ,
कारण कार्य,
कारण कार्य।
उपादेय हो तो फाइनल रिजल्ट हुआ ना,
कार्य हुआ,
कार्य फाइनल परिणाम हुआ ना,
फाइनल में एक ही तो परिणाम होता है ना,
वो जो जो चीज बनी और जो उसको हम उपाधि,
जो पर्याय हुई वो उपादेय और द्रव्य उपादान। अभी इसी मिट्टी के घड़े को हम निमित्त की तरफ से कुम्हार की तरफ से देखेंगे। तो कुम्हार ने घड़ा बनाया ऐसा जब कहते हैं, तो हम चाहेंगे ये कौन सा संबंध है इसमें, निमित्त का और ये कार्य का कौन सा संबंध है। निमित्त की तरफ से हम इसको नाम देंगे तो कहेंगे नैमित्तिक है, ये निमित्त का नैमित्तिक है। कुम्हार और घड़े में कौन सा संबंध है, कहते कि कर्ता कर्म संबंध नहीं है। तो कैसा संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये शब्द बहुत बार आएगा, ठीक है ना। जीव ने कर्म को उपशमाया, कर्म का क्षय किया, कर्म की ऐसी बंधा, ये कथन कैसा है, निमित्त नैमित्तिक संबंध। दो भिन्न द्रव्यों में, क्योंकि एक ही टाइम में दोनों कार्य हो रहे हैं, जिस पर आरोप आता है उस पर हम क्या कहेंगे, उसका कैसा संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध। जैसे हमें ऐसा बहुत बार लगता है ना कि अभी तक तो बोल रहा था, फिर किसी ने एनेस्थीसिया दिया तो बिल्कुल बेहोश हो गया, उसके ज्ञान की हीनता हो गई, तो उसने किया कि नहीं किया? तो हम क्या कहेंगे? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है,
उसमें दवा निमित्त
है और ये उसका नैमित्तिक कार्य हुआ। परंतु ये जो ज्ञान की हीनता हुई, उस रूप कौन परिणाम आया? तो जीव स्वयं। तो जीव ही उसका कर्ता है, जीव ही उसका उपादान कारण है। ख्याल में आती बात? जब जब दो भिन्न द्रव्यों में कारण कार्य संबंध कुछ दिखाई दे रहा है, तो वो कैसा कारण कार्य संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है।
इधर आप दोनों को जोड़ना चाहते हैं, जो
संबंध बता रहे
हैं,
क्योंकि लोगों को इसको कर्ता कर्म संबंध में लोग सब देखते हैं, मानते भी हैं। जब तक ये बाह्य से ही कुछ कार्य होता हुआ दिखाई देता है, और लोगों में कथन भी इसी कारण से होता है कि ये किसने किया, तो निमित्त को ही बताया दिया जाता है। क्योंकि हर कार्य अपने उपादान से ही होता है, तो उसमें तो क्या डिफरेंशिएट करना। तो हमारा जो लौकिक व्यवहार चलता है, वो निमित्त की भाषा में ही चलता है। परंतु उसके पीछे का रहस्य हमें पता होना चाहिए कि भले निमित्त होता है, कथन भी हम करेंगे निमित्त से हुआ, परंतु सही रियलिटी क्या है वहाँ पर, कि उसका निमित्त का उस कार्य के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है।
निमित्त तो निमित्त के कोई नाम अपने रखा हुआ, जो निमित्त है उसको ही।
हाँ, निमित्त ने किया तो नैमित्तिक बना उसका, उसने उस रूप परिणमित नहीं हुआ। कुमार घड़े रूप परिणमित नहीं हुआ,
बरोबर।
हाँ,
लेकिन कुमार तरफ से अभी आपने जो एंगल अभी हम निमित्त तरफ से देख रहे हैं, वो उपादान को छोड़ दिया,
तो
गौण कर दिया। तो हमने कुमार को कुमार के हिसाब से वो निमित है और नैमित्तिक द्रव्य है ना।
हाँ, घड़ा है, घड़ा कार्य हुआ ना,
कार्य हुआ,
फाइनल
प्रोडक्ट।
हाँ, दूसरे द्रव्य में कार्य हुआ। कुमार अलग द्रव्य है और ये घड़ा बना, वो मिट्टी द्रव्य में से बना। हाँ, तो मिट्टी निमित्त नैमित्तिक संबंध है,
घड़ो नैमित्तिक।
हाँ, घड़ो, बहुत अच्छा। हाँ, ऐसा
कुमार तरफ से,
हाँ, कुमार की तरफ से हमने देखा तो कुमार ने किया, तो कैसा कार्य हुआ? ये कर्ता कर्म संबंध नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध। ऐसे संबंध तो बहुत है, जैसे जीव ने मोह राग द्वेष परिणाम किया और कर्म बंधे, हमने देखा ना, यही पड़ी हुई कारमान वर्गणा कर्म रूप हुई, तो इसमें कैसा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध। कहेंगे क्या, जीव ने कर्म को बांधा, ये भिन्न द्रव्य है ना, तो फिर रियलिटी क्या है? तो जीव ने कर्म को छुआ तक नहीं, क्योंकि हर एक का स्वचतुष्टय भिन्न है। फिर हम वो सारी कारण मीमांसा बताएंगे। कथन तो हो रहा है कि नहीं, जीव ने कर्म को बांधा, ये कैसा संबंध है दोनों में? निमित्त नैमित्तिक संबंध। हम कहते जीव ने इतने कर्म बांधे थे, कर्म का उदय आया, असाता वेदनी का उदय आया, और यहाँ हमारा रोग चल रहा है, कुछ दुख रूप परिणाम चल रहा है, तो हम आरोप किस पर करते हैं? कर्म के कारण हम दुखी है। जीव की ये जो दुख रूप परिणाम है, राग रूप परिणाम है, या शरीर की जो रोग रूप अवस्था है, तो क्या कर्म ने की है? तो कहते नहीं, ये कैसा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वही तो मैं कह रही हूँ, ये कैसा संबंध है? कथन तो होता है, और हम शास्त्र में भी कथन होता है कि क्यों ये शरीर का ऐसी अवस्था क्यों हो रही है। हाँ, पूर्वों में ऐसा कोई संकलेश परिणाम किए थे, ऐसे कुछ परिणाम हुए थे, तो उसके उदय में ऐसी अवस्था हो जाती है।
तो हम कर्म को नहीं कहेंगे कि मेरा कर्म ऐसा था तो ऐसा मुझे बीमारी आई,
कहना अलग बात है
और समझना,
और उसके पीछे का रियलिटी क्या? ये शरीर की अवस्था है, उस रूप रोग रूप कौन परिणमित हुआ? शरीर। जीव तो उससे भिन्न द्रव्य है। हम कहेंगे मुझे बीमारी आई, कहने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा ही लौकिक कथन होता है। परंतु मुझे बीमारी आई है ऐसा कहते समय, मुझे आई है कि मैं भिन्न हूँ, शरीर भिन्न है, शरीर में आई है? बोलो,
शरीर में आई,
शरीर में आई। परंतु अभी हमारा ऐसा शरीर का और जीव का भी निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है, एक ही जगह रहते हैं, जीव के जैसे जैसे परिणाम होते तो शरीर की भी वैसे वैसे योग्यता से वो अपना परिणमन करता है। जैसे बोलने की क्रिया है, हालचाल चलने की क्रिया है, कैसे कैसे संबंध है जीव और शरीर में, निमित्त नैमित्तिक संबंध। यानी यहाँ जो तीन बातें, एक तो जीव है, एक कर्म है और एक शरीर है, कि जीव की इच्छाएं होती है, कर्म का उदय होता है, शरीर की भी अपनी अपनी अवस्था होती है, तीनों अपने अपने में परिणमित हो रहे हैं, फिर भी एक दूसरे के साथ कैसा संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध। इसीलिए ये कथन आते हैं कि ये कर्म का उदय ऐसा है इसलिए हुआ, परंतु हमें उसके पीछे का रहस्य समझना चाहिए। कर्म भिन्न द्रव्य है, मैं स्वयं भिन्न द्रव्य हूँ और शरीर भिन्न द्रव्य है, कैसे संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो मेरा जो कोई परिणमन हो रहा है वो मेरे अपने में अपने से हो रहा है, ये पहले नक्की करना है, हमके स्वीकार करना है। निमित्त संबंध है, होने दो, है ना वहाँ पर, परंतु हमें रियलिटी क्या समझनी है, मैं दुखी हो रहा हूँ, मैं रागी द्वेषी हो रहा हूँ, किसके अपराध से, मेरे अपने, कर्म ने कराया नहीं है, उस पर आरोप आता है, क्योंकि जैसा मेरा परिणमन है वैसा उसका हो रहा है वहाँ पर, तो उसका परिणमन देखकर कर्म ने कराया ऐसे कहने की पद्धति है। कर्म तो इंडिकेटर है कि यहाँ जीव में क्या चल रहा है, उसको इंडिकेट करता है, जैसे आपके पास वो थर्मामीटर है, बैरोमीटर है, वो इंडिकेट करता है बाहर कितना टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर का कंट्रोलर नहीं है। ऐसे ही कर्म की अवस्था, जीव की अवस्था ऐसे टाइम चल रही है, वो क्या बताता है, यहाँ क्या चल रहा है वो बताता है। हम पराधीनता से नहीं कुछ कर रहे, जीव अपने में अपने से परिणमित होता है, कर्म अपने में अपने से परिणमित होता है, दोनों ही भिन्न द्रव्य है। कैसा संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध। कहीं पर भी शास्त्र पढ़ते समय ये यहाँ लिखा ना, कैसा अर्थ निकालना, एक तो शब्द का अर्थ होता है, जीव ने कर्म को बांधा, लिखा है कि नहीं लिखा, तो फिर वो भावार्थ हुआ, फिर नया अर्थ लगाना उसमें, नए कौन से नए से बताया, तो व्यवहार ने से बताया है, क्योंकि दो भिन्न द्रव्यों का मिलकर कथन हुआ ना, एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य का किया ऐसा जो कथन है, उसमें वो नया अर्थ है, नया क्या कौन सा नए लगाना, ये व्यवहार ने का, फिर उसमें मतार्थ है ऐसे जो की जो कोई ईश्वर तो करने वाला नहीं है, अन्य मत ही मानते हैं, हाँ वो तो जीव की पर्याय है, कर्म तो निमित्त है, इस तरह से ये सारे अर्थ लगाने चाहिए। ये सारा सीखने का प्रयोजन क्या है, हमारी बोलने की भाषा कुछ और होती है और उसके पीछे का समझने का जो रहस्य है वो कुछ और है। ये तत्व ज्ञान की जब अभ्यास होता है, उसकी जब दृष्टि उत्पन्न होती है, तो हमारी बोली भाषा तो वही होगी, वो तो कोई सुधारने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे से बोलते हैं, पड़ोसी के साथ बोलते हैं, समाज में जाके बोलते हैं, डॉक्टर को जाके कहना पड़ेगा कि मेरे पड़ोसी को बुखार आया है, डॉक्टर के जिले किया उसको, फिर ये क्या ये लाया उसको, तो बताइएगा मैं आपको चिट्ठी देता हूँ, वो साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाना। ये तो हमें समझने की बात है, ये तो अंडरस्टैंडिंग अपने में होगा, इसे बोलने की बात नहीं है, बोली भाषा नहीं सुधरेगी और उसकी जरूरत भी नहीं है। कोई लोग तो ये अध्यात्म सीखकर केवल बोली भाषा सुधार देने की कोशिश करते हैं, क्या मैं इस शरीर से, ये आपको कितने पुत्र है, इस शरीर के दो पुत्र है, ऐसा कहने में आता है, इतना लंबा चौड़ा कोई बोलेगा क्या, है ना, तो उसको कहीं वो अध्यात्म की भांग पी गई उसका। ये तो जानने में, बुद्धि में, मान्यता में रखने की बातें होती हैं।
तो व्यवहार नहीं कथन,
नहीं जीव ने किया, ये तो निश्चय का कथन है, जीव के पर्याय में हुआ ना मोहराग द्वेष, मोहराग द्वेष रूप कौन परिणमा, जीव स्वयं, वो उसका अशुद्ध उपादान है, उपादान में भी उसको अशुद्ध उपादान कहेंगे। अब उसके निमित्त से कर्म बंधे, कभी क्या कहें, ये निमित्त नैमित्तिक कथन है, संबंध कैसा है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव और कर्म के, जीव और शरीर के बहुत सारे ऐसे संबंध है, क्योंकि हम जब सोचते हैं उंगली ऐसी हिलाओ, तो मैं हिलाता हूँ कि नहीं, तो मैंने उंगली हिलाई हम कह रहे, परंतु उसके पीछे का रहस्य क्या हमें मालूम चाहिए। मैं तो जीव हूँ, मैं भिन्न द्रव्य हूँ, उंगली ये शरीर के जो पुद्गल परमाणु वो भिन्न द्रव्य है और वो अपने कारण हिल रहे हैं उसकी क्रियावती शक्ति से, और मेरे में जो आत्म प्रदेशों का जो हिलना हो रहा है वो अपने का, दोनों एक साथ हिल रहे हैं, कैसा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हमें बुखार आया और हमने एक वो आपकी वो क्या कौन से चलते है टायलेनॉल यहाँ चलता है ना, उसकी एक गोली खाई और 15 मिनट में हमारा टेम्परेचर नॉर्मल हुआ, तो गोली के कारण हुआ कि नहीं हुआ?
गोली वही है।
ये जो टेम्परेचर स्पर्श गुण की जो पर्याय थी वो चेंज हुई, किसकी थी? शरीर की, शरीर के अनंत परमाणुओं की जो कुछ स्कंद की थी वो टेम्परेचर उसका डाउन हुआ, वो परिणमन शरीर में हुआ, तो उसका उपादान शरीर है और उपादेय उसका वो टेम्परेचर नॉर्मल हुआ। निमित्त कौन है? वो मेडिसिन। तो मेडिसिन के कारण बुखार कम हुआ, बहुत अच्छा। निमित्त नैमित्तिक संबंध है ये, हर बार जो क्योंकि हमें तो कार्य तो होते हुए दिखाई देते हैं और कोई तो कर रहा है ऐसा भाषित होता है, परंतु उसमें क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इतना नक्की करना है। देखो इसको फिर पढ़ेंगे हम, ये पेज पर आपके यहाँ 62 पेज है ना। घड़ा ही उपादेय है और घड़ा ही नैमित्तिक है, एक ही कार्य के दो नाम है। उपादान की तरफ से उसको उपादेय कहा, निमित्त की एंगल से देखा तो उसी को नैमित्तिक कहा, एक ही कार्य के दो नाम, क्योंकि दो कारण है ना, इसलिए नाम भी दो पड़े।
उपादान कारण में निमित्त कारण,
वो तो कारण दो हुए, कार्य के नाम दो हुए, कौन से दो नाम? उपादेय और नैमित्तिक। उपादान का उपादेय और निमित्त का नैमित्तिक, उपादेय और नैमित्तिक एक ही कार्य के दो नाम है। ये बात समझ में आई इस वाक्य का अर्थ? देखो घड़ा बना वो उपादेय है कि नैमित्तिक है?
घड़ा बना वो नैमित्तिक।
हाँ, किसका?
कुमार
का नैमित्तिक। उसी को उपादेय कहेंगे कि नहीं? बहुत अच्छा, माती की तरफ से उसी को माती का उपादेय कहेंगे और कुम्हार का नैमित्तिक कहेंगे, यानी कुम्हार की तरफ से निमित्त नैमित्तिक संबंध है और माती की तरफ से उपादान उपादेय संबंध है। जो जो कार्य घटित होता है, कोई भी कार्य हो रहा है, तो पहले सोचना इस रूप कौन परिणमा, तो उसका उपादान ख्याल में आता है और फिर बाह्य में उसके अन्य परद्रव्य उसको कुछ करते हुए हमें भासित होता है, उसका क्या संबंध है? तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हम जो कहते हैं मैंने रोटी बनाई, अब ये जो रोटी बनी उसका सच्चा कारण यानी उसका उपादान कारण कौन है? तो आटा। फिर भी अभी किस पर आरोप आ रहा है? मुकुंद भाई पर के रमेश भाई पर? या तो शीला बेन या नीला बेन जो बनाई रही है, तो उनका कैसा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध। उपादान और निमित्त एक कार्य के दो भिन्न कारण है, एक मिट्टी और एक कुमार, दो भिन्न कारण है। उपादान कारण तो निज शक्ति है और निमित्त पर है। कार्य निज शक्ति से ही होता है, उस समय निमित्त की मात्र उपस्थिति रहती है। ये समझ में आ रही बात? कार्य किससे हुआ? उपादान से ही 100%। ऐसा नहीं कि 50% उपादान से और 50% निमित्त से, ऐसा नहीं है, या 99% उपादान से और 1% निमित्त से, ऐसा भी नहीं है। 100% उपादान से और 0% निमित्त से, फिर भी उसकी उपस्थिति है, बस इतना ही उसका वहाँ कारण कहने में आता है।
थोड़ा सा क्लियर करने के लिए बात करते हैं। एक तरफ जो मट्टी है वो मट्टी खुद परिणाम की और घड़ा बन जाता है, तो वहाँ उपादान और उपादेय को सामने जो बनाने वाला है, जो दिखाई देता है बाहर से, वो अभी कुम्हार है, तो कुम्हार का उपादान जो हम सोचे तो उस कार्य में वो निमित्त है कुमार, उसका भी उपादान तो चल रहा है ना वो बनाने में।
हाँ, अभी कुम्हार का उपादान देखेंगे तो कुम्हार जीव है, वो जान रहा है, वो उसका उपादान उपादेय है। अब उसके शरीर की जो कुछ क्रियाएं चल रही है तो वो शरीर की क्रिया भी वो शरीर में हो रही है।
तो वो जो वहाँ घड़ा बना उसमें हम उसको कुम्हार को निमित्त कह देते हैं, उसका उपादान देखे बिना।
वो तो अपने कार्य का उपादान है, हम किस कार्य की सोच रहे हैं, हम घड़े की बात सोच रहे हैं।
अच्छा अच्छा, कुमार की तरफ से नहीं।
हाँ, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपना उपादान है ही है, अनंत द्रव्य प्रत्येक अपना कार्य कर रहा है, कोई भी द्रव्य निथल्ला बैठा नहीं है, हर एक द्रव्य अपने अपने कार्य का उपादान है। यहाँ वही द्रव्य अन्य का उपचार, ऐसे उस पर उपचार हो रहा है ना,
तो वो निमित्त है।
हाँ,
वो निमित्त है, और जो घड़ा है
नैमित्तिक है,
नैमित्त कुमार खुद निमित्त है और उसका घड़ा के साथ नैमित्तिक संबंध है।
वही तो निमित्त है, नैमित्तिक संबंध है, यानी कुमार का घड़े में क्या योगदान रहा तो उसका योग और उपयोग हम कहेंगे, उसके आत्मा के हलन चलन रूप क्रिया और उसका उपयोग जो कुछ ज्ञान की कार्य चल रहा है वो उसका इतना योगदान हम कहे, मतलब वो तो अपने में परिणमित हो रहा है, घड़े में तो उसमें तो अत्यंत भाव है। देखो आपने, हाँ,
एक क्रिया को देखो, घड़ा बना, घड़ा बना, यह जो क्रिया है तो उसमें दो कारण लगेंगे, एक तो निमित्त उपादान कारण और एक निमित्त कारण। तो पहले उपादान की अपेक्षा से हम देखते हैं तो घड़ा बनने की योग्यता तो मिट्टी में ही है, तो उसका उपादान मिट्टी हुआ, कार्य हुआ वो घड़ा। अब आपका जो कहना है कि वो जो कुमार को निमित्त कहा है तो निमित्त में भी उसका उसका उपादान होगा ना, तो उसका उपादान उसमें है लेकिन वो अन्य कार्य कर रहा है, ये घड़ा बनाने का कार्य हम अगर मानेंगे तो फिर वो कर्ता और ये कर्म हो गया।
आगे ये बात आएगी, देखो आगे के पैराग्राफ में, अभी तो मैं बता रही हूँ, ये तो केमिकल रिएक्शन आपको मालूम होगा कोई होती है तो वहाँ कैटलिस्ट होता है, आपने सुना है कैटल क्या होता है वो?
तो होता है,
होता है
इंक्रीज की प्रोसेस,
इंक्रीज है उसके प्रेजेंस में वो परिणमन होता है, पर इट डजंट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन,
न्यूट्रल बड़ी।
हाँ, ये न्यूट्रल रहता है, उसके प्रेजेंस में वो एक वो जैसे केमिकल रिएक्शन हो जाती है, उसमें ये कैटलिस्ट कुछ पार्ट नहीं लेता है, इस न्यूट्रल ऐसा ही निमित्त है, ये तो निमित्त के लिए मैं उदाहरण दे रही हूँ, ऐसे निमित्त वहाँ है बस, तो उसके हाजिरी में वहाँ अन्य द्रव्य अपने पर्याय रूप से परिणमित हो रहा है, इट्स जस्ट लाइक कैटलिस्ट।
उनकी एब्सेंस में केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, उनकी प्रेजेंस में वही केमिकल रिएक्शन होगा, लेकिन वो नहीं प्रोड्यूस।
अभी दृष्टांत एक देश लागू होता है, यहाँ हम कहेंगे जब उसकी योग्यता होती है तो निमित्त होगा ही होगा, ये हम उस एंगल से देख रहे हैं। देखो कार्य निज शक्ति से ही होता है, उस समय निमित्त की मात्र उपस्थिति रहती है, परंतु निमित्त कार्य में क्या क्या नहीं करता है, हेरा फेरी, मदद, असर, प्रेरणा आदि कुछ भी नहीं करता। कुछ प्रेरणा तो होता है, कुछ हेरा फेरी करता होगा, कुछ असर तो होता होगा उसका, तो ये कुछ नहीं करता। निमित्त की उपस्थिति में द्रव्य स्वयं ही वह कार्य करता है, बस उसकी हाजिरी है वहाँ पर और द्रव्य स्वयं अपने पर्याय रूप से परिणमित होता है। कार्य का कर्ता 100% उपादान ही है, निमित्त कार्य का कर्ता नहीं है, परंतु जब जब कार्य होता है तब तब अन्य अनुकूल चीजों की सहज उपस्थिति पाई जाती है, उन्हें निमित्त कहते हैं। अन्य अनुकूल चीजों की कहने अनेक निमित्त भी हो सकते हैं। अभी हमने तो कुमार को कहा तो कुमार को तो वहाँ तो चाक भी घूम रहा था, उसको भी हम निमित्त कहेंगे, वो डंडे से घुमा रहा था उसको भी निमित्त कहेंगे, फिर उसने वो दोरी लेके उसको कुछ बनाया तो उसको भी निमित्त कहेंगे, तो निमित्त तो अनेक भी हो सकेंगे वहाँ पर। तुम कहोगी, देखो ये हमारा प्रश्न है, यदि प्रत्येक कार्य मात्र उपादान से ही होता है तो फिर निमित्त का नाम लेने की भी क्या आवश्यकता है, प्रत्येक द्रव्य अपना अपना कार्य कर रहा है, उपादान से कर रहा है, तो फिर निमित्त नाम का जो आरोप आता है वगैरह उसका नाम लेने की जरूरत क्या थी, ये प्रश्न है। निमित्त का कथन भी क्यों करते हैं? बेटियों, निमित्त नाम का कोई विवक्षित द्रव्य तो है ही नहीं है। इस विश्व के अनंतानंत द्रव्य स्वयं की उपादान शक्ति से प्रति समय निरंतर परिणमन करते हैं। ये निरंतर परिणमन करने का तो गुण है, द्रव्य तो गुण है ना। तो हर द्रव्य के हर गुण में हर समय पर्याय होती 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 रहती है। अर्थात इस विश्व में से प्रत्येक द्रव्य स्वयं के पर्यायों का उपादान कारण है। जिन द्रव्यों की पर्याय अन्य द्रव्यों की पर्यायों में अनुकूल भासित होती है उन द्रव्यों को निमित्त कहा जाता है। क्या कहा? द्रव्य को निमित्त कब कहेंगे? कुम्हार को निमित्त कब करेंगे? वो जब घड़ा बनाता हुआ दिखाई देगा तब। कुम्हार खाना खा रहा है, सोया है, तब उसको कहेंगे क्या?
नहीं
कहेंगे। तो जब उस पर्टिकुलर द्रव्य की पर्याय इस द्रव्य के पर्याय में अनुकूल होती हुई भासित होगी तो उस पूरे द्रव्य को ही हम उसको निमित्त कहेंगे। गुरु से ज्ञान हुआ ये कैसा कथन है?
अब आप परिणमन हो गए।
निमित्त नैमित्तिक कथन है। गुरु से ज्ञान हुआ है कह दिया ना, परंतु शिष्य का ज्ञान कहाँ से हुआ? तो उसके अपने में से हुआ। तो वो स्वयं उसका उपादान करता है, उसका उपादान उपादेय संबंध है अपने पर्याय के साथ। परंतु गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया ये जो कथन आता है, या गुरु के बिना नहीं हुआ या गुरु से हुआ ये कथन है, ये कैसा है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। परंतु ये जो गुरु ध्यान में बैठे थे तब उनको हम निमित्त कहेंगे क्या?
नहीं
कहेंगे। गुरु अन्यत्र कहीं पूजा कर रहे थे तब हम उनको निमित्त नहीं कहेंगे। गुरु जब उसको पढ़ा रहे थे तब उनको निमित्त कहेंगे, है ना। यानी वो उस कार्य में उनकी कुछ पर्याय करते हुए दिखाई देती है, भाषित होती है, तब उस पर आरोप आता है, तो हम गुरु को ही निमित्त कहेंगे। बच्चे को पूछा हमारे यहाँ तो वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट कोई बच्चा आया तो उसको वो पूछते हैं, अरे ये कैसे तुमने हासिल किया था? तो मेरे गुरु के उपकार है। तो क्या कहेंगे हम? गुरु ने ज्ञान दिया ऐसा जो कहने में आता है, तो गुरु किस रूप परिणमित हो रहा है? उसके उपदेश देने के भाव आए, वो सिखाने रूप, उसका जो परिणमन बोलने रूप हुआ, और यहाँ शिष्य में जानने रूप कार्य हुआ, ये सब इकट्ठा एक साथ होते हुए देखकर वो गुरु पर आरोप आता है। ख्याल है ना? ये हम बच्चे का उदाहरण देखें। बच्चे ने क्या बताया? ये मेरे शिक्षक है, इनके कारण मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ गया। ये मेरी माता जी है, इनके कारण मैं फर्स्ट क्लास आया हूँ। तो क्या माता जी ने आके पेपर लिखा? क्या किया? मेरे माता जी ने उसको टाइम पर भोजन खिलाया, उसको बारंबार याद दिलाई, उसके साथ बैठी, उसको जागना था रात को तो चाय करके पिलाई। तो हम क्या कहेंगे? माता के कारण हम फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ गए। उस रूप परिणमा कौन? हाँ, तो ये सारे ही निमित्त नैमित्तिक कथन होते हैं। उसको उतना ही समझना कि ये निमित्त का कथन है।
तो उसमें प्रश्न नहीं आना चाहिए
उसको निमित्त अगर समझ में आवे तो वो स्वच्छंद आएगा ही नहीं। बच्चा तो ऐसा ही कहेगा, ये मेरे गुरु के उपकार है, ये मेरे माता जी के कारण हुआ है, ऐसा ही सहज होता है। और ऐसे लौकिक जो कथन होते हैं निमित्त के द्वारा ही होते हैं, और जो विनय आदि होता है वो निमित्तों का ही होता है। निमित्त से कार्य नहीं होता, ये किसने बताया? गुरु ने। उन गुरुओं के, उन भगवान के हम विनय कर रहे, भक्ति कर रहे। क्यों? क्योंकि ये रियलिटी तो उन्हीं ने ही तो बताई, तो उन्होंने बताई वो सुनकर स्वच्छंद नहीं होता है, तो उसने सच्चा ग्रहण ही नहीं किया। ये सहज ही ऐसा अगर उसको सत्य समझ में आता है तो उसके सहज उनके प्रति जिसको कहेंगे कि आदर भाव होता है, विनय भक्ति उत्पन्न होती है, और वही सच्चा विनय है। उसने गुरु से कुछ पाया ही नहीं, वो तो हम लोगों ने उनको गुरु बनाया, हमने भी उनको नमस्कार किया गुरु मन के, हमने लोगों ने उनकी भक्ति और विनय पाठ बोला, हमने भी बोल दिया, तो वो सच्चा विनय भी नहीं है, क्यों कुछ ग्रहण ही नहीं किया है हमने उनसे, तो कैसी भक्ति वो? अज्ञानी की भक्ति तो बाहर से बहुत भक्ति भाव से वंदना पूजा करता हुआ दिखाई देता है, परंतु वो उसको गुरु भी क्यों कहे? गुरु किसको कहेंगे? जिनके जिनसे हमें ज्ञान हुआ वो हमारे गुरु। इसने कुछ पाया ही नहीं तो उनको गुरु कहने का क्या मतलब है? किसी को गुरु कहे और उनकी भक्ति विनय करे तो इसको क्या लाभ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने बताया हुआ तत्व ज्ञान अगर सीखे तो वो उसका शिष्य हुआ, नहीं तो कहाँ से हुआ? ये जरूरी नहीं कि वो साक्षात सामने, उन्होंने कुछ पुस्तक लिखी है या श्रीमद जी ने जो कुछ लिखा है आप अभी पढ़ते हैं और पढ़कर उसको समझे तो वो उनके आपके गुरु हो गए। केवल उनको गुरु बनाया और उनकी पूजा की तो क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं हुआ, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि जिन्होंने उनसे सीखा है उनको उनकी भक्ति आती है, उनकी भक्ति देखकर हम भी उनकी भक्ति करने लगते हैं, तो हमें क्या मिला है? वो सच्ची भक्ति भी नहीं है। ख्याल में आई बात? भगवान महावीर के हमारे तो मंदिरों में भगवान महावीर को रखे पूजा करते रहते हम, और हमारे माँ बाप कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, परंतु भगवान महावीर ने क्या बताया है? मोक्ष का मार्ग कैसा बताया है? उसको जब तक हमने जाना नहीं और अपने आत्मा का अनुभव नहीं किया है तो वो सच्ची भक्ति भी नहीं है। वो सदाचार रूप से ऐसा वो रूढ़ी रूप से चल रही बस चल रही है, क्योंकि हमने भगवान को जाना कब कहेंगे? जब हमने अपने आत्मा को जाना तब हमने जाना, और तब हमें जो विनय होगा वो सच्चा होगा। बाकी तो रूढ़िगत हमारी जो कुछ चलेगी वो चलेगी। देखो यहाँ क्या कहते हैं, वास्तव में द्रव्य निमित्त नहीं होता, मिला ना उसी के आगे का पैराग्राफ पढ़ रही हूँ, उसकी विवक्षित पर्याय निमित्त होती है। जैसे हम कुम्हार प्रगटित किया, कुम्हार तो 24 घंटे वो तो क्या घड़ा नहीं बना रहे, खाना खाता है, सोता है और कुछ टीवी देखता है, उस समय तो हम नहीं कहेंगे कुम्हार निमित्त है, परंतु कथन करते समय हम उस द्रव्य को निमित्त कह देते हैं। ये कह देना बात अलग बात है। कोई भी द्रव्य जानबूझकर अन्य द्रव्य में निमित्त नहीं हो सकता, उसकी जो पर्याय की उपादान से जो उसका समय आया है हाँ उसी समय, तो कुमार चाहे जब घड़ा बना सकता है कि नहीं बना सकता, तो जो गढ़ा बनने की योग्यता उस मिट्टी में आई तभी वो कुमार को भी विकल्प आएगा वो बनाने का। हाँ, तादृशी जायते बुद्धि यादृशी भवितव्यता। हमें ऐसा लगता है सामने जीव ने उसने विचार किया उसको ऐसा बचाने का भाव आया तो बच गया ना, अरे यहाँ इसके बचने का टाइम था जीने का भी, तो किसी को विकल्प आया कि इसको बचाओ। हमें देखो मैं गया और उसको बचाया, देखो नहीं तो मर जाता, कहने की पद्धति ऐसा दिखने में आता है ना, कोई जीव है जीवड़ा है किसी के पैर के तले दब के मर जाता, हमने उसको हिफाजत से अलग कर दिया, देखो मैंने इसको बचाया कहेंगे, पर उसके पीछे का रहस्य क्या है?
आयुष्य
का अभी अश्रु बाकी था, ये भी निमित्त का कथन है। क्योंकि आयु कर्म से वो जिंदा रहा क्या? कि उसकी अपवेदन उसकी अपनी उपादान शक्ति की उस पर्याय में रहने की, उस पर्याय में रहने की, वैसे जीव तो अनादि अनंत जीता ही रहता है, उस पर्याय में रहने की उसकी अपनी उपादान शक्ति है, कहेंगे आयु कर्म बाकी था तो उसको कोई मार नहीं सकता। कहें कहो ना, समझने की बात अलग है, कहेंगे हमने उसको, बच्चों को भी बताए अरे इसको मारो नहीं बराबर संभाल के करो ऐसा कहेंगे, क्योंकि लौकिक व्यवहार तो हमें निमित्त की ही भाषा में चलता है, वो व्यवहार बदलने की जरूरत नहीं है, कथन बदलने की जरूरत नहीं है, कहाँ बदलने की जरूरत है? अपनी समझ में।
ये भावार्थ सही निकलना,
उसमें से भावार्थ आगमार्थ जो है वो नक्की निकलना चाहिए। हम तो केवल वो तो कथन बदलने की कोशिश करते हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं कथन बदलने की, उसका पीछे का रहस्य जान जाओ तो अपने को शांति शांति हो जाएगी, भले जी कथन में आए उसकी कोई बात नहीं है। देखो यानी कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य का मैं इसका निमित्त बनूं तो हो ही नहीं सकता, या पर्टिकुलर ही चीज मुझे निमित्त चाहिए वो भी नहीं हो सकती। क्योंकि हमें महाविदेह में जन्म ना है क्योंकि हम वहाँ से श्रीमंदर भगवान से उपदेश सुनना चाहते हैं, यानी हमने निमित्त नक्की कर दिया है और तब जाके हम प्राप्त करेंगे, अभी नहीं करना चाहते, ये सारी मिथ्या मान्यता है। हमने बहुत पहले छह द्रव्य और उनके विशेष गुणों की विस्तार से चर्चा की थी, जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। इन छह द्रव्यों में से धर्मादि चार द्रव्यों का वर्णन करते समय वे जीव और पुद्गलों को किस तरह निमित्त होते हैं यह बतलाया है। क्योंकि हमने धर्म द्रव्य की परिभाषा क्या देखी थी, स्वयं चलने वाले जीव और पुद्गल को गति करने में जो निमित्त होता है, निमित्त होता है कहा था, उपादान क्या है, जीव पुद्गल, कार्य क्या हो रहा है, गति कर रहे हैं। तो जीव और पुद्गल स्वयं अपनी उपादान से गमन कर रहे हैं, तब उसमें निमित्त किसको बताया, धर्म द्रव्य। ख्याल में, धर्म द्रव्य तो अपने में स्थित है, पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। जीव पुद्गल गमन करना करते हैं तो वहाँ वो हाजिर है, और गमन करते करते रुकते हैं तो अधर्म द्रव्य हाजिर है, फिर हम अधर्म द्रव्य को निमित्त कहेंगे। वहाँ पर गमन करते हैं तो धर्म द्रव्य को कहेंगे, और गमन करते करते रुक जाते हैं तो अधर्म द्रव्य को कहेंगे। कि धर्म द्रव्य का गति हेतुत्व, हेतुत्व ने निमित्तपना बनने का उसका गुण, और अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतुत्व गुण, यही दर्शाते हैं कि ये दो द्रव्य जीव और पुद्गलों को अनुक्रम से गति और स्थिति करने में निमित्त है। ये आगे वही परिभाषा फिर दोबारा मैंने बताया। देखो ये पैराग्राफ छोड़कर आगे का, निमित्त को उपकारी भी कहते हैं। आपने वो सुना होगा या देखा होगा परस्पर, एक पैराग्राफ छोड़कर मैं आगे बढ़ी हूँ। पैराग्राफ बदला नहीं है क्या उसने? अच्छा अच्छा, निमित्त को उपकारी भी कहते, मिला ना? आपने ये देखा होगा कि परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये तो बाद में मैं बताऊंगी परस्परोपग्रह। निमित्त को उपकारी कहते वहाँ से मैं पढ़ रही हूँ। तो आपने वो लोकाकाश, वो हाथ और परस्पर उपग्रह जीवाना में ऐसा देखा होगा ना, तो परस्पर उपग्रह, उपग्रह ने उपकार, तो एक दूसरे का उपकार करना चाहिए, ऐसा है क्या वहाँ पर, उसका क्या अर्थ है हम देखेंगे। देखो, निमित्त को उपकारी भी कहते हैं, निमित्त रूप से रहने का ही अर्थ उपकार है। तत्वार सूत्र में कहा है, गति स्थिति उपग्रह धर्माधर्म यो हो उपकार, यानी गति ये किसका उपकार है, तो धर्म का, और स्थिति किसका उपकार है, अधर्म का। उपकार है का अर्थ क्या है, निमित्त है, वे निमित्त है, वो उपकार करते हैं क्या, वो निमित्त रूप से है विद्यमान, बस इतना ही। हम जैसे हमने दूसरे का भला किया, उपकार किया, वो उपकार की भाषा यहाँ नहीं है। हमने देखा शब्द लिमिटेड है, और अर्थ हर एक साइंस में, हर एक अलग अलग विषय में उसका अर्थ अलग अलग होता है। मैंने बताया ना आपको, विंडो है, माउस है, हमारे घर में उसका अर्थ अलग हो रहा है, विंडो है, और वो टीवी कंप्यूटर की भाषा अलग है। ऐसे ही यहाँ जो उपकार शब्द का अर्थ क्या है, निमित्त बना, और निमित्त कितना क्या कार्य करता है, कुछ नहीं करता। आगे लिखे, सभी द्रव्यों को स्थान देने में आकाश द्रव्य निमित्त है, इसे ही आकाश द्रव्य का उपकार कहते हैं। देखो ये तत्वार सूत्र में भी आगे क्या लिखा है, शरीर, मन, वचन, श्वासोश्वास, इंद्रियजन्य सुख दुख, जीवन और मरण भी, इन सारों में पुद्गल जीव का उपकार करता है। क्या मरने में उपकार करता है? यदि हम लौकिक अर्थ निकालेंगे तो किसी का मरण होना उस पर उपकार है क्या? तो कहते ये उसमें निमित्त है, जीव के जीवन में और मरण में निमित्त का अर्थ क्या है? जीव तो हम उसी को कहते जो अनादि अनंत जीता है, फिर भी इसका जन्म हुआ, इसका मरण हुआ जो कहते हैं, वहाँ कर्म का निमित्त है, शरीर का संयोग वियोग है, तो हम कहेंगे वो पुद्गल का इस पर निमित्त है, उसका उपकार है। लौकिक भाषा में जय जय बेटा, लौकिक भाषा में हम जिसे उपकार करना कहते हैं वह यहाँ अर्थ नहीं है। एक दूसरे को भलाई करना चाहिए, उपकार करना चाहिए, वो बात यहाँ नहीं है। हा? हम क्या कहते, कंफ्यूजन करते, हमें जितना अर्थ मालूम है उसी अर्थ को मन में पकड़ कर हम शास्त्र पढ़ते हैं और फिर घोटाला होता है। इसकी भाषा यही कि उसकी कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए। प्रत्येक कार्य उपादान से, क्या कहा, प्रत्येक द्रव्य की अपनी निज शक्ति से स्व समय में होता है। यानी किसी भी द्रव्य की किसी भी पर्याय के लिए अन्य कोई तो उसका तो कोई करने वाला तो है ही नहीं है। कब होता है वो कार्य? अपने समय में, क्योंकि हर एक पर्याय का स्व समय निश्चित है, द्रव्य में ही निश्चित है वो।
उपादान में तीन कारण,
क्षणिक उपादान भी,
जो पर्याय है वो जो
स्व समय पूर्व पर्याय के वैसे होती है,
ऐसे ही इसमें लेना।
हाँ, ऐसे ही इसमें लेना कि प्रत्येक कार्य स्व समय पर होता है। अब उसका त्रिकाली उपादान भी वहाँ पर है, पूर्ववर्ती पूर्व पर्याय भी है और ये उसकी पर्याय की योग्यता भी है। यानी अपने समय पर निश्चित रूप से होगा कि नहीं, उसको कोई आगे पीछे तो कोई कर ही नहीं सकता। तो प्रत्येक कार्य अपने समय पर होता है। तब क्या कहा, निमित्त की सहज उपस्थिति होती, उपस्थिति भी सहज होती है। प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय स्व समय पर होती है। हमने देखा प्रत्येक पर्याय का अपना उपादान कारण निश्चित है, तो उस समय की पर्याय का निमित्त निश्चित है कि नहीं है? वो उसमें भी ये नहीं होता, दूसरा होता तो ये होता, ये बात ही नहीं है। तो जो पर्याय निश्चित है तो उस समय का निमित्त भी निश्चित है, और वो निमित्त की उपस्थिति सहज होती है। वो निमित्त नहीं आया तो ऐसा बन ही नहीं सकता। कितनी डेफिनेट बात है कि प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय स्व समय से अपने निज शक्ति से होती है, और उस समय उसका जो निमित्त है वो स्वयं वहाँ उपस्थित होता है, क्योंकि जो वहाँ अनुकूल है उसी पर तो निमित्त कहेंगे। कार्य होता है तो उसकी जो वहाँ अनुकूल परिस्थिति है उसी को तो हम निमित्त कहेंगे, तो वो निमित्त भी वहाँ स्वयं अपनी योग्यता से हाजिर होता ही है। यानी निमित्त नहीं आया इसलिए हमारा कार्य रुक गया, इसके लिए कोई वहाँ गुंजाइश ही नहीं है। हम कहते ना, कोई जा रहा है और वो प्लेन में चढ़ता है, उसका टिकट कोई ले जाता है और प्लेन जाता है और वो मर जाता है। अरे उसका मरण यहाँ पर लिखा था, या कोई जाते जाते अन्य किसी कारणवश मर जाता। हम कहते अरे इसका काल आया था, वो वहाँ नहीं मरता तो घर में बैठे बैठे मरता। नहीं, वो वहीं पर मरता और उसी कारण से मरता। ये निमित्त भी निश्चित है। तेरे उस हॉस्पिटल में क्यों गया, वहाँ नहीं जाना था, दूसरे इंडिया में तो बहुत चलता है, उपदेश देने वाले तो बहुत मिलते ऐसा क्यों क्या, वैसा क्यों किया, इधर क्यों गया, ये डॉक्टर को क्यों बताया? अरे उसका ऐसा ही होना था और उसी हॉस्पिटल में होना था
और वही डॉक्टर,
ऐसा ही होना था, सब कुछ निश्चित था। ये दवा नहीं ली, वो क्यों नहीं ली? अरे ऐसा ही होना था, वही दवा उसके पेट में जाने थे। और जो कुछ होनी है अवस्था शरीर की या जीव की, वही होनी है जो होने वाली है। तो फिर हमारी आकुलता बढ़ती है ना, कहाँ चले जाए, अभी बीमारी, अभी मरण सामने दिख रहा है, अमेरिका में जावे का लंदन में जावे जहाँ जाना होगा तो पर्यायगत योग्यता से होगा, वो उसके निमित्त सहज रूप से वहाँ उपस्थित होगी। जिसके विकल्प आएंगे जाने के, जाने का उसका निश्चित था तो जाना होगा, और नहीं जाने का होगा तो नहीं जाए, परंतु उसमें जो आकुलता से चटपटाहट होती है वो नहीं होगी। तो कहते हैं उसके निमित्त की उपस्थिति भी सहज होती है, उन्हें जुटाने के यत्न से जुटाए नहीं जाते। क्या कहा, निमित्त को हम इकट्ठा करेंगे उसको तो हमारा कार्य होगा, तो कहते उसको जुटाने से नहीं जुटते, और हटाने के यत्न से वे दूर भी नहीं होते। कोई निमित्त से हमारा कार्य बिगड़ा हो ऐसा हम जब कहते हैं, नहीं नहीं उसको हटा दो तो हमारा हो जाएगा, हमारा फेवरेबल, तो कहते कोई हटा नहीं सकते और कोई जुटा नहीं सकते। परस्परोपग्रहो जीवानाम सूत्र सर्वविदित है, सबको मालूम है ना, एक जीव दूसरे जीव के सुख में दुख में उपदेश आदि में जन्म देने में मरण में उपकारी यानी निमित्त में कहते तो है वो तो बार बार मुझे तकलीफ देता है इसलिए मुझे दुख होता है तो ये क्या है निमित्त है एक जीव दूसरे जीव में निमित्त है जैसे उपदेश देने में निमित्त है माँ अपने बेटे को जन्म देने में निमित्त है ये सब कैसे है उपकार का अर्थ क्या है निमित्त है वो हमारा उपकार करता ऐसा नहीं है तुम कहोगी मरण में निमित्त तो अपकार हो गया इसे आप उपकार क्यों कह रही है ये तो खोटा हुआ ना मरण में निमित्त तो सीधे उपकार का अर्थ वो नहीं जो हम लौकिक में समझते मैं थोड़े ही कह रही हूँ यह तो आचार्यों का कथन है अभी एक मिनट पहले हमने देखा था उपकार शब्द का अर्थ निमित्त है जीवों को एक दूसरे की मदद करना चाहिए ऐसा इस सूत्र का अर्थ नहीं है फिर भी लोग इसी अर्थ में उसको यूज कर रहे हैं पता ही नहीं जिनागम का आगमार्थ कैसे सोचना कैसे पढ़ना केवल शब्दशः अर्थ लेते हैं उस शब्द का लौकिक में जो अर्थ है वो वहाँ पर फिट कर देते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए निमित्त है एक जीव भी दूसरे जीव के लिए निमित्त होता है जैसे शिष्य गुरु का जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है माँ बेटे का है जब या किसी के साथ झगड़ा होता है तो क्रोध में निमित्त हम कहेंगे तो क्या होता है क्रोध आया तो उसने उपकार किया ना तुम पर तो वो निमित्त हुआ लौकिक अर्थ में उपकार शब्द यहाँ नहीं है जिस तरह अन्य द्रव्य जीवों के कार्य में निमित्त है जैसे धर्म द्रव्य का उपकार है कहा अधर्म द्रव्य का उपकार है कहा क्यों वो निमित्त है वैसे ही एक द्रव्य में दूसरा द्रव्य एक जीव में दूसरा जीव निमित्त कहा बस उसका इतना ही अर्थ है परंतु इसका अर्थ ऐसा कदापि नहीं है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करता हो कार्य में मदद करता हो प्रेरणा देता हो क्योंकि लौकिक में जो हम देखते हैं ना इसको प्रेरणा दे दो जैसे कोई स्कॉलर आए तो हमें थोड़ी प्रेरणा मिली कुछ दिन तक तो हम स्वाध्याय करते रहे तो थोड़ा हमको पुश मिला ये क्या है ये लौकिक कथन है हम कहते हैं कि ऐसे लोग हमको मिलते हैं जब सुनते हैं तो अच्छा लगता है कुछ दिन तक चलती है गाड़ी बराबर फिर डिरेल हो जाती है परंतु वो प्रेरणा वाली वो बात नहीं लेना यहाँ पर उपकार अर्थात निमित्त कहना तो उस द्रव्य की सहज उपस्थिति दर्शाना है अन्य कुछ नहीं है यही निमित्त का इतना ही योगदान है कि उसकी उपस्थिति रख उसने हमारे में कुछ हैंडल मार के गाड़ी स्टार्ट की ऐसी कुछ बात है ही नहीं है काल द्रव्य अन्य सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त है आपने देखा हुआ काल द्रव्य का क्या है उसका डेफिनेशन तो परिणमन हेतु अन्य द्रव्य अपने अपने में परिणमन कर रहे हैं क्योंकि एक समय में एक परिणमन होता है और काल द्रव्य में भी अपने में जो उसका परिणमन होता है उसको ही हम समय कहते हैं जो काल द्रव्य है वो निश्चय काल है जैसे हम जीव द्रव्य है ये पुद्गल द्रव्य है वैसे काल नाम का एक द्रव्य है लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य स्थित है ये काल द्रव्य का जो परिणमन हो रहा है जिसको हम टाइम कह रहे ना अभी कितना समय बीत गया तो हम कहेंगे अभी वो 45-50 मिनट हो गए ये हमने क्या गिना कितना टाइम पास हुआ उसको गिना एक 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 समय करते 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 अभी यहाँ 50 मिनट हो गए तो ये क्या है ये व्यवहार काल है ये काल द्रव्यों का परिणमन है एक समय बीता दो समय बीता एक सेकंड बीता एक घंटा बीता ये जो हम कहते हैं ये हमारे इतनी उत्सर्पिनी अवसर्पिनी चली गई कल आया था ना काल परिवर्तन तो ये क्या है सारे काल द्रव्य का एक एक समय का परिणमन बताया जाता है और उस पैसेज ऑफ टाइम में प्रत्येक द्रव्य एक एक समय में अपने में परिणमन कर रहा है तो काल को क्या कहते हैं ये निमित्त है परिणमन के लिए काल द्रव्य ने हमारे में क्या किया वो प्रेजेंट है वो अपने में परिणमित हो रहा है उसने में अपने में क्या परिणमन किया तो एक घंटा बीत गया और उस घंटे में हमने यहाँ कुछ सीखा तो हमारे ज्ञान में जो परिवर्तन होते गया हर समय ये परिणमन कहाँ हुआ अपने में निमित्त किसको बताया? काल द्रव्य को। धीरे डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई बर्न हुआ, कुछ जख्म हुई, तो क्या बताया? ये 8 दिन में ये ठीक होगा। तो ये 8 दिन लगे, तो 8 दिन ने वो काल ने शरीर में क्या किया? कुछ नहीं किया। शरीर तो अपने में परिणमित होकर 8 दिन के काल में उसने ये परिणमन किया। ये बोलने के लिए हम आरोप किस तरह करते? काल पर। जैसे हम कहते कि कोई दुख है, किसी का कोई वियोग हुआ, तो हम क्या कहते? काल ही इसके ऊपर इलाज है। यानी इस कालांतर में वो तो थोड़ा सा उसका दुख थोड़ा मंद हो जाएगा, ऐसे कहते भी है ना। तो ये काल क्या है? परिणमन हेतुत्व कहा उसको। वो परिणमन कराता नहीं है, द्रव्य स्वयं परिणमित होते हैं। कितने काल में? एक एक समय में। तो ये एक समय कार्य किसका है? तो काल द्रव्य का। तो उसमें ये परिणमन में निमित्त है, ऐसा हम कहेंगे। देखो, काल द्रव्य अन्य सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपनी उपादान शक्ति के कारण परिणमित होता है, तब काल द्रव्य उसमें निमित्त है। काल द्रव्य उन्हें परिणमता नहीं है, क्योंकि काल तो अपने में परिणमन कर रहा है। काल का परिणमन क्या है? समय 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 समय, पैसेज ऑफ टाइम, यही काल द्रव्य का परिणमन है। ये सारे सिद्धांत हमें अपने आप पर यानी आत्मा पर घटित करने हैं, क्योंकि जो कोई सिद्धांत हम अप्लाई करते हैं वो अपने पर घटित करना आना चाहिए, क्योंकि हमारा मूल प्रयोजन हेतु क्या है? अपने को समझना है। ये 6 द्रव्यों के बारे में जो कोई सिद्धांत हम घटित करते हैं वो फाइनली अपने पर घटित करना है यहाँ पर आकर, क्योंकि हमारा प्रयोजन तो यानी हमारा एम तो आत्मा के स्वरूप को जानना है। हमारे ज्ञान दर्शन चारित्र आदि अनंत गुणों का कार्य हो रहा है क्योंकि वो निरंतर होता ही रहता है, तो उसमें कारण कौन है? और हम भी उसमें विशिष्ट पर्याय चाहते हैं। श्रद्धा का कार्य अनादि से चल रहा है, परंतु हम उसे सम्यक दर्शन चाहते हैं। ज्ञान का कार्य मतिशुद्ध ज्ञान तो अनादि से चल रहा है, हम उसमें केवल ज्ञान चाहते है ना। चारित्र गुण का अनादि से राग द्वेष चल रहा है, हम उसमें वितरागता चाहते हैं। तो ये हमारे जो कार्य का कौन हमें मदद करेगा? कोई हमारे कार्य में विघ्न तो नहीं डालेगा, ऐसे लगता है ना। चौकन्ना नहीं ना चाहते, इस बात का हमें विचार करना चाहिए। देखो, हमारे ज्ञान गुण का जानना 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 कार्य तो निरंतर चल रहा है। हम जान रहे हैं, यह बात हमारे प्रत्येक के ख्याल में आती है, अनुभव में आती। क्या कहा? आप जान रहे हो ना? हाँ जान रहे। क्या हुआ है? तो अभी हम ये सुन रहे हैं। फिर क्या? हमें भूख लगी, हमें जानना हुआ कि नहीं हुआ? हमें नींद आई, हमारे जानना हुआ? हमको रोना आया है, हमने जाना। ये जानना 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 कार्य हो रहा है, इस बात का हमें ख्याल है कि नहीं, एहसास है कि नहीं? तो हर एक जीव को ये ख्याल में है कि मैं जान रहा हूँ, ये तो प्रकट अपना लक्षण है। परंतु आज तक अज्ञानी जीव की ऐसी ही मान्यता हो रही है कि सामने वस्तु है, इसीलिए मुझे ज्ञान हो रहा है, ज्ञेय के कारण ज्ञान हो रहा है। अब इसका भी कैसा संबंध है? निमित्त नहीं है, क्योंकि ज्ञेय परवस्तु परवस्तु में है, और यहाँ जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान में अपने से हो रहा है, तो इसके कारण यहाँ ज्ञान का परिणमन हुआ, ये कहना कैसी बात है? निमित्त नैमित्तिक कथा। तो क्या ज्ञेय के कारण ज्ञान हुआ क्या नहीं हुआ? तो कहते नहीं, वो उपस्थित है। अगर उपस्थित होने से ही ज्ञान होता तो पूरा लोक ही उपस्थित है, पूरे लोक का अभी हमें ज्ञान होना चाहिए। परंतु तो हमारी ज्ञान की पर्याय जितनी शक्ति है उसमें अभी वर्तमान में जितनी प्रकट अवस्था है, व्यक्त पर्याय है, उतना ही जानना हो रहा है। ज्ञान की प्रत्येक पर्याय ज्ञान गुण का कार्य है, और उसका कर्ता ज्ञान है, ज्ञान गुण है, वह उपादान कारण है। ज्ञान गुण के अलावा अन्य कोई भी इस ज्ञान पर्याय का उपादान कारण नहीं है। परंतु तुम ही सोचो, क्या सचमुच तुम ऐसा मान रही हो? सामने पुस्तक है इसलिए ज्ञान हुआ, गुरु से ज्ञान हुआ, प्रकाश है इसलिए ज्ञान हुआ, अंधेरे में कैसे हो सकता है? मुंह में गुलाब जाम रखा इसलिए उसकी मिठास का ज्ञान हुआ, चश्मा लगाने से ज्ञान हुआ, ऐसे लोगों की मान्यता दिखाई देती है। कहना बात अलग है और मान्यता की बात है, ऐसा ही मानते हैं, इस बात का यह निषेध कर रहे हैं। हमारी मान्यता सही होनी चाहिए। अभी से यही रुकेंगे हम, यही इसी विषय को फिर आगे बढ़ेंगे बढ़ाएंगे हम। बोलो 2400 भगवान की।